अब आगे वो लोग जो अल्लाह के हाथों बिक जाते हैं, जो अल्लाह के साथ एक सौदा कर रहे होते हैं, उनकी खूबियां क्या हैं? आयत 112 से 122। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अल हामिदून असाइहून अर राकिउन साजिदून। वो ऐसे हैं जो तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम करने वाले, रोज़ा रखने वाले, राह हक में सफ़र करने वाले, रुकू और सजदा करने वाले, नेक बातों की तालीम देने वाले और बुरी बातों से बाज रखने वाले और अल्लाह की हदों का ख्याल रखने वाले हैं। और ऐसे मोमिनीन को खुशखबरी सुना दीजिए इतने कामों के बाद, वबशिरिल मोमिनीन। अपना जायजा लीजिए, मैं इनमें कहूँ, देखिए पहली चीज़ तौबा है। तौबा कब होती है? जब गुनाह होते हैं या फिर नेमतों की कदर के लिए तौबा। इससे पता चला कि अल्लाह ताला यहाँ बहुत नेक लोगों को नहीं सिर्फ ले रहे, गुनाह करके भी आए हुए लोगों के साथ अल्लाह की ये डील है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना, तो कुछ आप दे रहे होते हैं, कुछ लेते हैं। कोई घर की डील है, भाई ये करो, ये पेमेंट प्लान है, ये दोगे, इस तरह होगा, इसके बदले में हम ये घर देंगे, इतने बेडरूम होंगे, तो अल्लाह ताला आपको मुझे जन्नत में जगह देने के लिए इन सारी नेकियों के ऊपर शर्त दे रहे हैं कि पहले ये करोगे तो मनाओगे। और अगर हम ये ना करें और सिर्फ जन्नत की उम्मीदें रखें, तो जुमला लिख लीजिए, जन्नत अमल से मिलेगी, इन सारे कामों को करके मिलेगी, सिर्फ ख्वाहिशों और दुआओं से नहीं मिलेगी। मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू। पैगंबर को और दूसरे मुसलमानों को जायज़ नहीं कि मुशरिकीन के लिए मगफरत की दुआ मांगे, अगरचे वो रिश्तेदार ही हों, इस अमर के जाहिर हो जाने के बाद कि ये लोग दोस्ती हैं। अब यहाँ आजमाइश फिर आ गई, सूरत के अब एंड की तरफ जा रहे हैं। और इधर आप देखेंगे कि पहले जो अल्लाह के नबी को और पीछे सहाबा को आजमाया गया था कि उनके प्यारे उन्हीं के मुकाबले पे आ जाते थे और ये जंगों में उन्हीं के ऊपर तलवारें तान लेते थे, यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी जा रही है। वमा काना इस्तग़फारु इब्राहिम। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए दुआ मगफरत करना, वो सिर्फ वादे के सबब था जो उन्होंने उससे कर लिया था। फिर जब इन पर ये बात जाहिर हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तो वो इससे महज बेताल्लुक हो गए। और हकीकत यह है कि इन्ना इब्राहिम अलावाहुन हलीम। बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल और बुर्दबार थे, यानी दिल में दर्द था। अपने बेदीन रिश्तेदारों पे दर्द रखिए, उनके बारे में तड़पिए, लेकिन अल्लाह के कवानीन को पूरा करना है। वमा कान अल्लाहु लियुदिल्ला कौमन बाद इज़ हदाहुम। और अल्लाह ऐसा नहीं करता कि किसी कौम को हिदायत करके बाद में गुमराह कर दे, जब तक इन चीज़ों को साफ साफ ना बतला दे जिनसे वो बचे। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानता है। बिला शुबा अल्लाह ताला ही की सल्तनत है आसमानों और ज़मीन में, वही जिंदा करता और मारता है। और तुम्हारा अल्लाह ताला के सिवा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। क्या पता चला कि मदद अल्लाह से मांगो, दोस्ती अल्लाह ताला से करो। और अब आगे फिर दोबारा तौबा किए जाने वाले लोगों की और नबी के उनके साथ मामले की बात है। लकद ताब अल्लाह अला नबी वल मुहाजरीन वल अंसार। अल्लाह ताला ने पैगंबर के हाल पर तवज्जो फरमाई और मुहाजरीन और अंसार के हाल पर भी। उन्होंने ऐसी तंगी के वक्त पैगंबर का साथ दिया, इसके बाद कि इनमें से एक गिरोह के दिलों में कुछ तजलजल हो चला था, फिर अल्लाह ने इनके हाल पर तवज्जो फरमाई। बिलाशुबा अल्लाह ताला इन सब पर बहुत ही शफीक और मेहरबान है। क्या पता चला कि राहे हक में चलते चलते कभी कभी अच्छे अच्छे लोगों के दिलों में भी शक आने लगता है, लेकिन शक ठहरता नहीं है, थोड़ी देर रुकते हैं लेकिन फिर चल पड़ते हैं कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ये हम किसकी बातों में आ गए, ये हमने क्या कर दिया। बल्कि फिर पहले से भी ज्यादा खालिस होके प्योर होकर आते हैं। कुछ सहाबा में से एक आध ऐसे भी नाम है कि जो वक्ती तौर पे पीछे रहे। अबू खैसमा उनका नाम था, लश्कर चला गया, ये अपने खेतों पे आए, काम किया, दोपहर का वक्त हुआ, बीवी आई रोटी बना के, गर्म रोटी सालन, छिड़काव किया, बिठाया, अब लुकमा तोड़ के सिर्फ मुंह तक बढ़ाया सिर्फ। और एकदम ख्याल आ गया कि अबू खैसमा तुफ है तुझ पे, अल्लाह के रसूल पता नहीं कहाँ होंगे, पता नहीं उन्होंने खाया कि नहीं, उनका क्या हाल है, और तू यहाँ ये मौज कर। और उनकी मौज क्या थी, किसी रेस्टोरेंट में नहीं बैठे थे, दरख्त के साए में थे। वहीं लुकमा छोड़ा, बीवी से कहा मेरी सवारी तैयार करो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा मिले। दूर से घोड़े का आना और खाक उड़ता देखना नबी के दिल के ऊपर एक ठंडक बन के पड़ा, कहा अल्लाह करे ये अबू खैसमा हो, जिनसे मोहब्बत होती है उनकी तरफ नजरें लगी रहती हैं। वो क्यों नहीं आए, वो आज क्यों नहीं। स्टूडेंट से भी बात सफाई इतनी उनसियत हो जाती है कि कोई एक रोज आए और एक दिन ना दिखे ना, तो पूरा वक्त टीचर के दिमाग में आता रहता है वो क्यों नहीं है, अल्लाह खैर करे वो किधर चली गई। तो ये चीजें दिलों के रास्ते की हैं। तो इन आयतों से आपको मुझे भी ये अमल मिला कि अगर कभी किसी नेकी से थोड़ा सा पीछे रह भी गए हैं, डेली डेली का शिकार हो भी गए हैं, तो जब तौफीक मिले फौरन वापस आ जाए। यकीन कीजिए अल्लाह के रास्ते में कभी ताना नहीं मिलता, कभी आपको कोई शर्मिंदा नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान है, इंसानों में कमी बेशी होती है। ट्रैफिक में चलते चलते कभी तेज गाड़ी चलती है, कभी ट्रैफिक मिलती है बिल्कुल ही आप 20-30 पे आते हैं। तो हिदायत के रास्ते पे चलते रहिए, थोड़ा सा ठहर जाए लेकिन कभी एग्जिट ना ले। आगे वो तीन लोग जिनका नाम कह लीजिए कि सूरत की जान है, वाला सलासतिल्लसीन खुल्लिफू, और तीन शख्सों के हाल पर भी जिनका मामला मुलतवी करके छोड़ दिया गया, यहाँ तक कि जब जमीन बावजूद अपनी फराही के इनके ऊपर तंग होने लगी और वो अपनी जान से तंग आ गए, और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कहीं पनाह नहीं मिल सकती सिवाय इसके कि उसी की तरफ रजू किया जाए, फिर इनके हाल पर तवज्जो फरमाई ताकि वो आइंदा भी तौबा कर सकें। बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला बड़ा रहम वाला है। बड़ा खूबसूरत वाक्य है। काब बिन मालिक जो शायर भी थे और आखिरी ज़िंदगी में नाबीना हो गए थे, उन्होंने अपने किसी बच्चे को सुनाया था, और वही वाक्य आज हदीस की नज़र आपको बहुत मिलता है। ज़रूर सुनिए क्या आजमाइशें थी इनकी और क्या इनके हौसले थे। हम तो ज़रा सी बात पे बदगुमान होने लगते हैं। कितना कोशिश किया एक बादशाह ने इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करने के लिए कि तुम्हारे साथी ने तुम्हारी कदर नहीं की, क्या हुआ अगर एक दिन नहीं गए तो। और आपको तो इन तीन में से दो तो बदरी सहाबी भी थे। लेकिन इससे पता चलता है कि माजी की नेकियों पर ना सिर्फ इतफाक कीजिए, आज आप क्या हैं और खात्मा किस पे हो रहा है। बाज़ लोग कहते हैं हमसे फला नेकी हो गई थी, अब हमें किसी नेकी की जरूरत नहीं, सब हमारे ही तो सदका जारी है। भाई सदका जारी है तो है, पर आप किधर हैं। आयत 119, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ रहो, तौहीद वालों के साथ रहो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सच तौहीद है। क्या पता चला कि काब बिन मालिक ने चूंकि सच बोला था, उस सच पे अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। उन्होंने कहा आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो आपको मुझे सच्चे लोगों में रहना चाहिए, साफ सुथरे दिल वाले, सादे लोग, प्लेन लोग, डिप्लोमेटिक नहीं, इधर की बातें उधर वाले नहीं है, और झूठ झूठ बोलकर अपनी चीज़ों को पेश करने वाले नहीं। और अल्लाह ताला आपको मुझे इसी की तौफीक अता फरमाए। अब दोबारा कुछ बातें अरबियों की, और आप देख रहे हैं इस बारे में अरबियों का बहुत जिक्र है, इसको आज के दौर में अब देहाती कह लें, गांव में रहने वाले देहाती। तो ये बताती है कि कुरान जो है ना ये सबके लिए, शहरों वालों के लिए भी है और देहातों और बस्तियों वालों के लिए भी, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और आज भी ये कुरान शहरों में भी पढ़ा सुना जाता है, और इसी को कह लीजिए कि बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी पढ़ाया जाता है। और अल्लाह का शुक्र है मैंने इस चीज़ को आजमा के देखा कि आप कुरान चाहे जोहराबाद के एक छोटे से देहात में बैठ के पढ़ा रहे हैं किसी को, या मंडी बहाउद्दीन के किसी मदरसे में जाके पढ़ा रहे हैं, या फिर आप दुनिया की उन सारी कुव्वतों को जिनको लोग आज फॉलो करते हैं वहाँ पढ़ाएं, कुरान एक ही तरह है। आपको सिर्फ एक अंदाज़ा देने के लिए बता रही हूँ कि पिछले साल का दौरा कुरान अमेरिका से हुआ ना, अटलांटा से, जो लोग सुनते हैं उनको तो पता है लेकिन आप लोगों को नहीं पता। अब इस साल ये ज़िंदगी का पहला दौरा कुरान है जो किसी अरब मुल्क में हो रहा है, और वो भी इतने खूबसूरत मुल्क में हो रहा है। इसी तरह नॉर्वे में कई साल हुए, इंशाल्लाह किसी मौके पे आपको उस पूरी लिस्ट दिखा देंगे साथी कि क्या क्या थीम चल चुके हैं, ताकि अगर आप इस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थीम को सुन चुके हैं तो बाकी दिनों में दूसरा भी कोई सुन लीजिए। लेकिन जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो ये कि कुरान नहीं बदला, मैंने एक ही जितना इंजॉय किया, क्योंकि ये कुरान एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है कि आप जिन लोगों के साथ पढ़ते हैं आपको लगता है ये इन्हीं के लिए बेहतरीन है। तो आप ज़रा इस सारी तमहीद के साथ सुनिए, मदीना के रहने वालों को और जो देहाती इनके इर्दो गिर्दो पेश हैं, इनको ये ज़ेबा न था कि रसूलुल्लाह को छोड़कर पीछे रह जाएं, और ना ये कि अपनी जान को इनकी जान से अजीज समझें। ये इस सबब से कि इनको अल्लाह की राह में जो प्यास लगी थी और जो थकन पहुंची थी और जो भूख लगी और जो किसी ऐसी जगह चले जो काफिरों के लिए मूजिबे गैस हो और दुश्मनों की कुछ खबर ली, इन सब पर इनके नाम एक एक नेक काम लिखा गया। बहुत प्यारी बात है, इस रास्ते में एक कांटा भी चुभेगा अल्लाह वो भी लिख लेगा। और अगर ला न युसीबुहुम ज़माऊं वला नसबुन वला मखमसतुम फी सबीलिल्लाह, अगर आपने कभी अल्लाह के रास्ते में कभी भूख नहीं सही, प्यास नहीं सही, थकत नहीं आपको हुई, आपने कदम नहीं उठाए, तो याद रखिए ये बहुत ज़्यादा महरूमी की बात है। इन सब पर अल्लाह ने इनके नाम एक एक नेक काम लिखा। यकीनन अल्लाह ताला मुहसिनीन का अदर ज़ाया नहीं करता, और जो कुछ छोटा बड़ा उन्होंने खर्च किया और जितने मैदान इनको तय करने पड़े, ये सब भी इनके नाम लिखा गया ताकि अल्लाह ताला इनके कामों के अच्छे बदले दे। तो पता चला अल्लाह सब बदले देने पे कादिर है। अबू खैसमा का भी इसमें नाम आता है। कैसे अल्लाह ताला पीछे से जाकर भी उनको साथ मिला देता है। तो कुछ लोग बड़ी देर से आते हैं आपके सफर में, साथी बनते हैं, लेकिन उनसे आपका बड़ा प्यारा ताल्लुक बन जाता है। और अल्लाह कभी किसी के आमाल को ज़ाया नहीं करता। इसीलिए अब आगे एक आयत, यहाँ चूंकि बहुत देर से जिहाद फी सबीलिल्लाह में किताल की बातें हो रही हैं, क्योंकि पूरी सूरत में ही रंग गालिब है, तो अब इससे ऐसे लगा कि सभी किताल के लिए निकल जाएंगे, तो फरमाया ऐसा ना कीजिए, बल्कि क्या होगा, अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, वमा कानल मोमिनून लियनफिरू काफा, और मुसलमानों को ये ना चाहिए कि सब निकल खड़े हों, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि इनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे, ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल करें, और ताकि ये लोग अपनी कौम को जबकि वो इनके पास आए डराएं, ताकि वो डर जाएं। ये है जी खूबसूरत थीम। यानी जब जिहाद की इतनी फजीलत सुनी तो सहाबा में से हर एक जिहाद पे जाना चाह रहा था। अब जब वो सब चले जाएंगे तो मदीना का निज़ाम कौन चलाएगा, वहाँ के इदारों को कौन देखेगा, वहाँ की जिम्मेदारियों को कौन देखेगा, और सबसे बड़ी बात इल्मी जिहाद कौन करेगा। तो इधर एक बड़ा प्यारा सबक दिया गया कि हर इलाके से कुछ लोग आए दीन सीखें। अल्लाह के नबी के बस लोग ट्रूप्स की सूरत में आते, गिरोहों की शक्ल में आते, कुछ दिन रहते, फिर सीखते, फिर जाकर अपनी बस्तियों को सिखाते। कुछ लोग आते, इस्लामी तालीमात लेते, इस्लाम कबूल करते, फिर जाकर अपनी बस्ती में पैगाम देते, जैसे अबू ज़र वापस गए, पूरी कौम उनके कहने पर मुसलमान हो गई। तो ये है वो तरतीब जिससे इस्लाम फैला। अगर आप ये आयत पूरी तफसीर के साथ सुने ना डिटेल में, तो आपको समझ आएगा कि इस्लाम का मिजाज क्या है। आज इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के पौधे पे बहार नहीं है, कुरान से नहीं जुड़े हुए लोग गवर्नमेंट के लेवल पे हर मुल्क के अंदर, या अगर नॉन मुस्लिम मुल्कों में है तो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस को ये सहूलत देनी चाहिए। मुसलमानों को डॉक्टर्स में से कुछ डॉक्टर्स को छुट्टी मिले, वो एक साल के लिए या कुछ खास तौर पे एक शॉर्ट कोर्स या महीनों के साथ जाकर खुद दीन सीखें, कम से कम बेसिक्स तो सीखें। नमाज रोज़े का पता हो, अकीदे का पता हो, तहारत के मसाइल पता हो, फिर वो वापस आए तो दूसरों को दिया जाए, यानी शिफ्ट्स के साथ लोग सीखें। इसी बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम रमज़ान के फौरन बाद एक कोर्स शुरू करते हैं, और ये कई सालों से चल रहा है, और अल्लाह ने इसमें बड़ी बरकत दी हुई है, और इसको सबीलुल जन्ना कहते हैं। अभी से दुआ मांगनी कम से कम शुरू कर दें, और अगर लिंक कहीं दिखे तो अपने आप को रजिस्टर कीजिए। आप कहीं से भी हैं आप सीखिए, फिर आप उसके बाद नूरुल्ला नूर कोर्स करते हैं, उसमें टीचर ट्रेनिंग होती है, कुछ और कॉम्पिटेंसी के दर्जे पे आपका तर्जमा तजवीज तफसीर पूरी की जाती है, फिर ऐसे ऐसे आपको जिम्मेदारियां दी जाती हैं, और आप 3-4 साल में दूसरों को सर्व करने के काबिल हो जाते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ हॉस्टल है, जैसे अभी तक हमारे हॉस्टल्स जो हैं पाकिस्तान में ही हैं एक दो जगहों पे, लेकिन ऑनलाइन पे कोर्स ये ऑफर होता है अगर आप ऑनलाइन से लेना चाहें। एक हॉस्टल मुझे भी याद आ गया कि एक शहर से कुछ बच्चियाँ आई थी पहले साल जोहराबाद के कोर्स के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चियाँ अब क्या आईं और फिर गईं। अब वो हर साल उसी शहर से ज़रूर कोई बच्ची आती है और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जाकर बाकी काम कर। देखिए कोई एक दिन में मास्टर तो नहीं बन जाता, ना पढ़ाने के काबिल होते हैं, लेकिन एक मिजाज बनता है। कम से कम लोगों को आप सही दावत देते हुए और उनकी नमाज रोज़ा और उनके अकायद की इस्लाह तो कर सकते हैं। माशरों की रूट जो है, यानी ग्रास रूट तक कुरान पहुँचाइए। मेट्स को आप कुरान पढ़ाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको रोज़ पढ़ने में। आपके ड्राइवर्स, आपके माली बाबा, आपके हस्बैंड्स के ऑफिस में काम करने वाले बेचारे लोग जो सारा वक्त रोटी रोजी के लिए रहते हैं, उनको आधा पौना घंटा दीजिए कि भाई आपको पे मिलेगी लेकिन आप दीन सीखे। सियासतदानों पे डाल दीजिए कि पहले आप थोड़ा सा कुरान सीखें फिर आपको हम वोट देंगे। तो अल्लाह ताला ने ये सारी बात करके इल्मी जिहाद की रग़बत दिलाई, तदब्बुर और अमल के नुक्ते, खुद को कुव्वत और बर्दाश्त का आदी बनाइए कि वो आपकी सिफत बन जाए। यानी मोमिन बर्दाश्त वाला होता है, कुव्वत होती है, छोटी सी बात में उसको नज़ला जुकाम खांसी जुकाम नहीं हो जाता, उसकी कमर नहीं दोरी हो जाती। खास तौर पर रमज़ान में आपको एफर्ट करनी पड़ती है जिस्मानी तौर पे, और जब आप बाहर आए होते हैं खास तौर पे उम्रे के लिए, तो फिर वहाँ तवाफ भी हैं और तरावी भी हैं, तहज्जुद है, तो ज़रा सा अपने जिस्म को मजबूत बनाइए। और रफ एंड टफ जिंदगी गुजारिए, ना कि बहुत ही अपने लाड़ देखते रहें हर वक्त। आपसे कोई गुनाह हो गया हो तो तौबा के जरिए अल्लाह का तकर्रुब हासिल कीजिए, किसी दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं। इस नीयत से नेक काम में शिरकत करें कि आपका हर कदम नेकियों के पड़े में तोला जाएगा। कुरान से रहनुमाई। ईमान की हकीकत का तकाजा है कि मोमिन को दूसरों पर मुकद्दम रखा जाए, यानी जिसका जितना ज़्यादा ईमान उसको उतनी ज़्यादा फौकियत दी जाए। नफ्स पर नागवार चीज़ों में अल्लाह की इताअत की जाए तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है। जी, अपने नफ्स को दबाना है। हर एक के लिए वही काम आसान किया जाता है जिसकी खातिर उसे पैदा किया गया, एक हदीस का खुलासा है। चुनांचे अगर आप इल्म हासिल करने वाले हैं तो दुनिया आपको गाफिल नहीं कर पाएगी, इसी में लगे रहिए। गौर व फिक्र की बात है, जिसको अल्लाह ने दोस्त बनाया है सिर्फ इसी को दोस्त बनाए, और जिसको दुश्मन बताया है इससे दुश्मनी रखे, यानी अलखुब्बु फिल्ला वल बुग्जु फिल्ला। दोस्ती और दुश्मनी का मेयार सीधा हो जाए तो हमारे मुआशरे में से 80% बेकार रसूमात और फंक्शंस और प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाए, इल्ला माशाल्लाह। राह हक में आने वाली मुश्किलात की घड़ी बहुत कम होती है, जबकि इनका सवाब बहुत ज्यादा है। अब देखिए ना कि कितने कुछ साल थे, टोटल 10 साल थे मदीना में अल्लाह के नबी और सहाबा की एफर्ट्स के। आज तक उसके असरात आपको दुनिया में दिख रहे हैं ना, और आज भी देख लें कि आपके अपनी पूरी जिंदगी भी अगर एफर्ट में गुजर गई तो उसके मुकाबले में जन्नत कितनी बड़ी है। जब दिल मखलूक से उम्मीद ख़त्म करके पूरे तौर पर अल्लाह से जुड़ जाए तो ये खैर की अलामत होती है और परेशानी के दूर होने की निशानी है। अल्लाह हमारे लिए ऐसा कर दे। आलिम के जरिए इल्म का फैलना इसकी बरकत है, और इसका जरो सवाब आलिम के हक में बढ़ता रहता है क़यामत तक लोगों के इल्म हासिल करने की सूरत में। इसलिए इल्म को फैलाइए, इसकी नशर इशात में हिस्सेदार बनिए। आप खुद नहीं भी किसी को दे सकते तो किसी का दिया वही पहुंचा दें, अजर में बराबर होंगे नियतों और हालात के मुवाफिक। आगे देखिए, अब बिल्कुल आपको अल्लाह सुबहाना ताला एक और खूबसूरत तरीका दे रहे हैं। आयत 123, या अय्युहल लज़ीना आमनू क़ातिलुल लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ार, यानी अल अक़रबु मिनल अक़रब, करीब वालों से पहले और दूर वालों से उसके बाद। ऐमन वालों, इन कुफ़ार से लड़ो जो तुम्हारे आस पास हैं, और इनके लिए तुम्हारे अंदर सख्ती होनी चाहिए, और ये यकीन रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के साथ है। देखिए कितनी प्यारी आयत के ऊपर रुब हुआ 123 आयत पे। मुनाफिकीन के दिल की कुछ हालतें बयान की जा रही हैं। कुरान की महफिल में भी उनके दिल परेशान हो रहे होते थे, क्योंकि फिक्र क्या थी कि हमारा कोई पोल ना खुल जाए। इसलिए अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुम, और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो बस मुनाफिकीन कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान को ज्यादा किया है। बस जो लोग ईमानदार हैं, इस सूरत ने इनके ईमान को ज्यादा किया है और वो खुश हो रहे हैं, और जिनके दिलों में रोक है इसको हाईलाइट कीजिए और दुआ करें अल्लाह मैं आप में से कोई ऐसा ना हो कि कुरान की महफिल में भी हो और ऐसा हाल हो कि जैसे कचरे के ढेर के ऊपर बारिश पड़े तो बू फैलती है, और फूलों की क्यारी पे बारिश पड़े तो खुशबू आती है। कुछ लोगों के दिलों पर कुरान का पानी पड़ता है तो खुशबू निकलती है, मुअत्तर हो जाती है फिजा उनकी वजह से। और जिनके दिलों में रोग है, इस सूरत ने इनमें इनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी, और वो हालते कुफर में ही मर गए। और क्या इनको नहीं दिखलाई देता कि ये लोग हर साल एक बार या दो बार किसी न किसी आफत में फंसते रहते हैं, फिर भी ये तौबा नहीं करते और ना नसीहत कबूल करते हैं। ये हम सब के लिए गौर व फिक्र का नुक्ता है। दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे कोई ना कोई डिजास्टर आता ही रहता है, कभी सुनामी आती है, कभी आग लगती है, कभी कुछ। तो इससे क्या पता चलता है कि नेचुरल डिजास्टर्स, यानी जो तबई तौर की या आसमानी आफात होती हैं, उससे भी इबरत लेनी चाहिए। फिर दोबारा कुछ बातें मुनाफिकीन की, जो कि मिली भगत होती थी ना, वो सीखने की नीयत से नबी के पास नहीं जाते थे, वो तो बल्कि सिखाने की नीयत से कह लें, या फिर आपकी गलतियां चुनने के लिए, या फिर फितने फैलाने के लिए। और अमूमन ये यहूद या फिर मुनाफिकीन होते थे, तो उनके बॉडी लैंग्वेज को, उनके फेस एक्शंस को कैसे पेश किया जा रहा है, आप कह लें उनकी फेस आईडीज। व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरा, और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तुमको कोई देखता तो नहीं, यानी इधर उधर देखते हैं चुपके चुपके, किसी ने देखा तो नहीं। तो फिर चल देते, चुपके से खिसक जाते हैं, यानी जब दिल करता निकल जाते, जब दिल करते आ जाए, या कोई मुश्किल बातें या कोई ऐसी बातें जिससे उनका निफाक खुलता था तो चले जाते थे, या किसी वक्त कोई सिलेक्शन हो रहा होता था, अच्छा ये काम आप कर लें वो कर लें, अच्छा सदका देना है करना है, यानी जहाँ कोई लाइबिलिटी आती थी और कोई खूबी कोई फायदा मिलता कोई अपॉर्चुनिटी आती तो चुपके से फिर वहां बैठ जाते थे। अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते हैं अल्लाह ने इनका दिल फेर दिया है इस वजह से कि वो बेसमझ लोग हैं। ये दुआ करें कि अल्लाह कुरान पढ़ के ना हम भटके। देखिए दुनिया में कितने लोग हैं ना जो कुरान नहीं पढ़ते, तो बेचारे हिदायत से दूर हैं। कितनी महरूमी है हमारी अगर हम कुरान पढ़ के पढ़ा के सुन के सुना के भी हम लोग हिदायत से दूर हों, हम फिर ना समझें। इसीलिए अब अल्लाह ताला ऐसे तमाम लोगों को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जो एक नेमत अल्लाह ताला ने दी है उसकी तरफ इशारा है। खूबसूरत तरीन आयत है सूरत तौबा की, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनिततुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं जो तुम्हारी जिन से हैं, जिनको तुम्हारे नुकसान की बात नहायत गिरां गुजरती है, यानी बोझल गुजरती है, जो तुम्हारे फायदे के बड़े हरीस हैं ख्वाहिशमंद हैं। इन्हीं आयतों पे हमने ज़ादुल खैर में भी बात की डिटेल से, और ईमान वालों के साथ बड़े शफीक और मेहरबान है। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला का नाम अर रऊफ भी है और अर रहीम भी है। अल के बगैर यहाँ रऊफ और रहीम है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत रहीम और रऊफ आपको दिख रहे हैं। कैसे आप अपने साथियों के लिए तड़पने वाले थे, उनकी गलतियों से रूगर्दानी करने वाले थे, आप तो दुश्मनों के लिए भी रहमत वाले थे, आप अपनी जान पे रिस्क ले लेते लेकिन अपने दुश्मनों को अपने से दूर ना करते, खंदा पेशानी से पेश आते, किस तरीके से आप उनके साथ अपने मामलात को करते थे, इसको समझते हुए आइए ज़रा अखलाके नबी के बारे में हम देखेंगे कि अल्लाह के नबी ने कैसे ये सारे मामलात किए। लेकिन नबी को यहाँ तसल्ली दे दी कि आप दुश्मनों में घिरे हुए हैं, आप इर्द गिर्द इतने मुनाफिक है, क्योंकि गज़वे तबुक से वापसी पर आपको मुनाफिकीन के नाम तक बता दिए गए थे और आपने फिर वो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन जमान को बता दिए, तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं फ़ाइन तवल्लौ, फिर अगर ये रूगर्दानी करें, फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने इसी पर भरोसा किया और वो बड़े अर्श का मालिक है। ये है जी सबसे बेनियाज करके आपको अल्लाह का नियाजमंद करने वाला नुस्खा। ये वो खूबसूरत चीज़ है जिसको सुबह शाम की दुआओं में अल्लाह के नबी मांगा करते थे। आपको बहुत सारी कुरान की दुआएं हदीस में भी दिखेंगी, ये भी उसी में से ही है, तो अमल की बात नोट कीजिएगा। अगर लोग आपसे मुंह फेर ले, फाइन तवल्लाओ के लफ्ज़ को पीछे से समझिए ना, यानी कभी कभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं सिर्फ किसी नेगेटिव प्रोपेगंडे की वजह से, या जैसे अब्दुल्ला बिन उबई उस दौर में किस तरीके से झूठी खबरें इधर उधर फैलाता था, तो अल्लाह कह रहे हैं कि नबी आप लोगों को ना देखें, लोगों का आना या लोगों का जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसकी नजरें अल्लाह पर होंगी, जिसका काम अल्लाह के लिए होगा, जिसका अल्लाह तआला के साथ राबता होगा, उसको कह देना चाहिए हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफ़ी है, मेरे लिए वही काफ़ी है, मैंने उसी पे भरोसा किया। और ये एक बंदे मोमिन का अकीदा होता है, इसलिए इस चीज़ को अपने सामने रखिए, अपनी ज़िंदगी का एक शुआर बना लें, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जोड़ना है, अजर की उम्मीद अल्लाह से लेनी है और अपनी आखरत की फ़िक्र करनी है। इस वक्त हम कुरान पढ़ रहे हैं ना, हत्ता के हदीस पढ़ना और उसको याद रखना और उस पर गौर व फिक्र करना उसके बारे में बड़ी प्यारी खुशखबरी है। और हकीकत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात इधर रऊफ और रहीम है ना, उसका अमली इजहार भी है। आपने एक दुआ दी, सुनन इब्ने माजा की रिवायत 232 में हदीस आती है, हज़रत अब्दुल्ला से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया नदर अल्लाहुल मरा, अल्लाह ताला उस शख्स को खुश रखे जिसने हमारी कोई बात सुनी फिर इसे दूसरों तक पहुंचाया। बाज़ औक़ात जिसे हदीस पहुंचाई जाती है वो बराह रास्त सुनने वाले से ज्यादा याद रखने वाला होता है। ये है नबी का सिलसिला, एक से दूसरे पे चलते चलते हदीस हम तक पहुंच गई। और चेहरे की चमक की दुआ है फ्रेश रखना। तो इससे अपने लिए अमल का नुक्ता लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनना, सुनाना, इस पे गौर व फिक्र करना, ये हमारी अपनी ज़िंदगी में खुशी भी लाता है और खूबसूरती भी लाता है। सूरत भी पूरी हुई, तदब्बुर की चंद बातें अमल के नुक्तों के साथ, ईमान में इजाफे की नीयत से कुरान की तिलावत करें और लफ्ज़ों पे गौर करें कि मुझे कितना समझ आ रहा है। अल्लाह ताला से इसकी मोहब्बत और इताअत की दुआ मांगे, क्योंकि ये तौफीक भी अल्लाह ही देगा आपको मुझे। फिर हस्बी अल्लाह वाली दुआ ना सिर्फ ये कि मांगे बल्कि इसको अपना अकीदा बना लें। कुरान पाक से रहनुमाई, अल्लाह के हुक्म को अपनी नफसानी ख्वाहिश पर तरजीह दीजिए। कुरान पाक से फ़ायदा ना उठाने वाला दिल बीमार दिल होता है, इसका इलाज करवाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सिफात अपनाने की कोशिश कीजिए। लोगों के साथ नरमी और रहमत का मामला करना है। गौर व फिक्र की बातें, कामिल मोमिन अपने भाई के लिए रेशम की तरह नरम और दुश्मन के लिए फौलाद की तरह सख्त होता है। वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, वो रस्म में हक को बातिल तो फौलाद है मोमिन। दूसरों की भलाई चाहना और इनके साथ शफकत और रहम करना एक दाई को पसंदीदा बनाता है। अल्लाह ताला ने सिर्फ भरोसा करने का हुक्म नहीं दिया बल्कि भरोसे के साथ दुआ का भी हुक्म दिया है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इस बात की गवाह है कि आप अखलाक के आला दर्जों पे थे। ग़ज़वे तबूक का तذکرہ हमने इस सूरत में पढ़ा। कुछ वाक़यात जिससे आपको अख़लाक़े नबी दिखेगा सुन लीजिए, शायद के हमारे दिल भी खुल जाएं। आज का मौजू क्या है, इन खजूरों को पूरे ढेर पर फैला दें। कभी कभी इंसान ये सोचने लग जाता है कि शायद जो ज़्यादा देते हैं उनका ही कबूल होता है, शायद उनका ही तذکرہ होता होगा। अच्छा, जो ज़्यादा नेकियां करते हैं, ज़्यादा वक्त लगाते हैं, ज़्यादा माल करते हैं, उन्हीं की को जगह बनती हैं। तो अल्लाह के नबी ऐसे नहीं थे, और आज भी किसी दाई दीन को ऐसा होना है तो क्या अल्लाह के नबी जैसे थे। गज़वे तबुक 9 हिजरी में पेश आया। इस्लामी तारीख में इस गज़वे की बेहद अहमियत है। तबुक मदीना तय्यबा से शमाल की जानिब कमोबेश 800 किलोमीटर के फासले पर है। इस गज़वे में खर्च करने के लिए अल्लाह के नबी ने सहाबे कराम को शौक दिलाया। इन्हें बताया कि अल्लाह ताला ने सदका करने वालों के लिए बहुत बड़े अजर का वादा किया है, इसलिए हर किसी ने अपनी ताकत से बढ़कर खर्च किया। इस गज़वे को जैशुल उसरा कहते थे, तंगी वाला लश्कर। अल्लाह के नबी ने इस गज़वे में अतियात देने वालों की किस तरह हौसला अफजाई फरमाई, किस तरह अपने आला अखलाक का मुजाहरा किया, आइए सुनिए। इसके ऊपर पहला वाक़या अब्दुर्रहमान बिन खबाब कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह जैशुल उसरा के मुतालिक खर्च करने की तरगीब दिला रहे थे तो मैं उस वक़्त वहाँ मौजूद था। उस्मान बिन अफान खड़े हुए और अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, मैं 100 ऊँटों का बीमा साजो सामान जिम्मा लेता हूँ। अल्लाह के रसूल बहुत खुश हुए। अल्लाह के रसूल मसीह नबी में अपने साथियों को अल्लाह की राह में खर्च करने की फिर रग़बत दिला रहे थे कि अल्लाह की राह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। एक मरतबा फिर हज़रत उस्मान खड़े होकर अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं 100 ऊँट मज़ीद साजो सामान मुजाहिदीन के लिए पेश करता हूँ। अब 200 ऊँट हो गए, ये कोई मामूली अतिया तो नहीं था, मगर इस गज़वे के लिए तो बहुत ज़्यादा सामान, ऊँट, घोड़े और नक माल दरकार था। अल्लाह के नबी फिर रग़बत दिला रहे थे। एक मरतबा हज़रत उस्मान फिर खड़े हुए, मज़ीद 100 ऊँटों का अतिया, अब 300 हो गए। बार बार अल्लाह के नबी फंड रेजिंग कर रहे हैं, या लिखिए अल्लाह के नबी फंड रेजिंग करने के रूप में भी आपको दिख रहे हैं। मजबूर नहीं कर रहे, रग़बत दिला रहे हैं, लोगों की खैर को उभार रहे हैं। तो लिखिए, मांगना और बात होती है और इत्तला देना और बात होती है। आज भी अगर कोई नेकी का प्रोजेक्ट चल रहा हो तो उसके बारे में लोगों को बता देना कोई बुरी बात नहीं। लोग पहले से ढूंढ रहे होते हैं, हम किधर खर्च करें, हम अपनी ज़कात किधर लगाएं, हम अपनी कोई फला नीयत की हुई है किधर करें। तो अल्लाह के नबी कैसे करें, रग़बत दिला और साथ दुआएं दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि जब कोई अपना माल या अपनी कोई प्यारी चीज़ आपके पास लाए या आपको दे तो दिल खोल कर उनको दुआएं दीजिए। हज़रत उस्मान ऊँटों में इजाफा करते जाते हैं, सिर्फ ऊँट नहीं बल्कि 100 घोड़े भी दे रहे हैं, और अल्लाह के नबी दुआएं देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। अब्दुर्रहमान जो हदीस बयान कर रहे हैं वो कहते हैं, मैंने देखा अल्लाह के नबी मिंबर की सीढ़ी से नीचे उतरते हुए अपने साथी की इस तरह हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, क्या मा अला उस्मान मा अमीला बादा हाजा, उस्मान आज के बाद जो भी अमल करे इस पर कोई गिरफ्त नहीं। फिर आप फरमा रहे हैं आज के बाद उस्मान कोई भी अमल कर ले इस पर कोई गिरफ्त नहीं। तो क्या पता चला, उस्मान को अपने कायद की तरफ से हौसला अफजाई मिली, जन्नत की खुशखबरी मिली। ये कोई मामूली पजीराई तो ना थी। हजरत उस्मान अपने घर जाते हैं, अपनी चादर में 1,000 दीनार डालते हैं और उन्हें लेकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह के रसूल ने इन्हें लेकर उलटना पुलटना शुरू किया और फिर अपने साथी को क्या एजाज दिया, मा दर्रबना अफाना मा अमीला बादलम, अफान का बेटा। अब उस्मान ने कहा अफान का बेटा जो काम करे इसे अब कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और सीरत लिखने वाले बताते हैं कि हजरत उस्मान ने गजवे तबुक में 900 ऊंट, 100 घोड़े और 1,000 दीनार नकद पेश किए और अल्लाह के नबी बार बार ये अल्फाज दोहराते रहे। ये रिवायतें तिरमिजी में भी है, 3700, 3701, मुस्नद अहमद की जिल्द 5 के पेज 63 पे भी है और रही को मखतूम में पढ़ना चाहें तो पेज नंबर 411। अब आप बताइए क्या प्यारी शख्सियत है जिन्होंने गज़वे तबूक में सबसे ज्यादा अतिया दिया। अल्लाह के नबी ने उनके साथ क्या मामला किया, कितना खुश हुए। आप कहेंगे हाँ उस्मान अपने घर के थे, ये थे वो, ना ना ना, आइए जरा एक वाक्या सुने कि जिन्होंने सबसे कम अतिया दिया रसूलुल्लाह ने उनके साथ क्या सलूक किया। अबू अकील नाम के एक अंसारी साहबी थे, इनके पास मालो दौलत की फरावानी तो नहीं थी मगर दिल अल्लाह के रसूल की शदीद मोहब्बत से मामूर था। रात भर मेहनत मजदूरी करते रहे जिसका मुआवजा इन्हें 2.5 किलो खजूरें 1 साख के बराबर होती हैं वो मिली। इनमें से आधी खजूरें तो अपने घर वालों को दे आए कि घर में कुछ भी ना था, बाकी खजूरें लेकर वो रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं। यकीनन शर्मा भी रहे थे कि मैं क्या लेके आ रहा हूँ, जहाँ दीगर लोगों ने इतने बड़े बड़े अतियात दिए हैं बस नबी के सहन में लोगों के अतियात का ढेर लगा हुआ है। इधर मुनाफिकीन इन्हें देख कर इशारे कर रहे हैं, इन्हें आर दिला रहे हैं कि देखो मियाँ अल्लाह रसूल तुम्हारी इन चंद खजूरों के मोहताज तो नहीं है। अल्लाह के रसूल ने अपने साथी को देखा और फिर आपके आला अखलाक को तो देखिए, आपने हुक्म दिया कि अबू अकील की खजूरों को अतियात के तमाम ढेर के ऊपर फैला दिया जाए। चुनाचे इनकी खजूरों को तमाम ढेर के ऊपर फैला दिया गया। मुनाफिकीन अपना समूह लेकर रह गए, यानी उनको तो बड़ी मायूसी हुई कि ये क्या हो गया। और ये वाक्या जो अभी सुनाया ये बुखारी 4668, मुस्लिम 1018 और अल मोजम अल कबीर तबरानी की जिल्द 1 के पेज 45 पे है। तो अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को क्या दर्स दिया कि इस्लाम में देने वाले की नीयत को देखा जाएगा, वो किस जज्बे का हामिल है। अगर वो कम अतिया भी देता है तो बाज़ औक़ात इखलास की बुनियाद पर ये बड़े बड़े अतियात पे आता है। और आज हर एक के लिए मैं ज़रूर इस पे बात करना चाहूँगी कि जो मस्जिदें मदरसे या किसी और अच्छी कॉज के लिए लोगों को फंड रेजिंग की कॉल देते हैं या उनको कोई डोनेशन की दावत देते हैं या उनको बगैर कहे कोई देता है तो उसकी नंबर एक हिफाजत करें और दूसरी बात उसको अप्रिशिएट भी करें। ये नहीं कि लोगों को गिल्ट होने लगे और लोग सोचें कि पता नहीं हमने क्या कर दिया और क्या नहीं किया। तो बहरहाल अखलाक के नबी के इन सारे वाक़यात को पढ़ने के बाद हम सब दुआ करते हैं अल्लाह हमारा अखलाक अच्छा कर दे और तंगी तुरशी जैसे भी हालात हों, सूरह तौबा में जो हमने पढ़े अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों में अपने अपने हालात के मुताबिक अमल वाला बना दे। यहाँ पे एक हैवी और एक भारी सूरत पूरी हुई,